नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आईआईटी दिल्ली के स्नातक परास्नातक के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की। दिल्ली मेट्रो के अनुसार स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के दौरान पतंगबाजी के कारण होने वाली ओवरहेड इक्विपमेंट ट्रिपिंग में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। दिल्ली पर्यटन विभाग आज और कल गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क UER2 शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के अंतर्गत विकसित की गई हैं।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से दिल्ली NCR में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफी वृद्धि होगी, वहीं दिल्ली वासियों को उनके आवागमन में समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के लिए सुधार का अर्थ सुशासन का विस्तार है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का निरंतर प्रयास लोगों के जीवन को आसान बनाना है।
दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहाँ आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली NCR मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहाँ नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है।
ये परियोजनाएं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क द्वितीय राजधानी को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना, यात्रा समय में कटौती करना और दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात को कम करना है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दूरदर्शी नेता के रूप में प्रशंसा की और समावेशी शासन, राज्यों के बीच समान भागीदारी और राजनीति से ऊपर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने संबंधी उनकी नीतियों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि RTS के माध्यम से दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद समेत सारे शहर आपस में जोड़ दिए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
आपने दिल्ली के हक का एक एक पैसा, दिल्ली को जनता को मिलने वाली एक एक सुविधा अनवरत जारी रखी और आज भी वो सारी सुविधाएं जारी हैं। अमृत योजना में आपने दिल्ली को 940 करोड़ रुपए हर साल दिए। आपने स्वच्छ भारत मिशन में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए।
इस अवसर पर दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली से जुड़े राज्यों में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे जाने वाले रास्ते पर यातायात कम होगा और दिल्ली में प्रदूषण भी घटेगा।
दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एयरपोर्ट जाने में जाम कम होगा, दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, दिल्ली का जनजीवन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से सुगम होने जा रहा है।
इन परियोजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्गों के साथ अलीपुर से दिचाऊ कला खंड का भी उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली की जनता को 11,000 करोड़ रुपए के दो हाई स्पीड कॉरिडोर देने के लिए आभार व्यक्त किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण केंद्र सरकार ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार के समय से शुरू किया था और आज यह लोकार्पित हुआ है। श्री सचदेवा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जो विकास के अधूरे काम दिल्ली में रुके हुए थे, अब वह भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आईआईटी दिल्ली के स्नातक परास्नातक के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की। इस अवसर पर आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी सहित शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे। बातचीत के दौरान श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने और भारत को समाधानों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत के नव प्रवर्तकों और शोधकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने नवीन विचारों को सामने लाने, चुनौतियों पर काम करने तथा हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तक प्रयास करते रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों से मिलने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 20 से 25 वर्षों में हमारे युवाओं के कंधे पर एक सुनहरा भविष्य निर्मित होते हुए देखा जा सकता है।
2047 तक भारत डेवलप्ड नेशन होके ही रहेगा, समृद्ध भारत होगा जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है। हमारी देश की नौजवान कॉलेज स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे इन्हीं के कंधे पे आने वाले 20-25 साल में अमृत काल में एक सुनहरा भविष्य में देख पा रहा हूँ। मैं खुद को प्रेरित करके यहाँ से जा रहा हूँ।
दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के दौरान पतंगबाजी के कारण होने वाली ओवरहेड इक्विपमेंट OHE ट्रिपिंग में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली मेट्रो के अनुसार पतंग के मांझे का मेट्रो की तारों में उलट जाना ओवरहेड इक्विपमेंट OHE ट्रिपिंग का प्रमुख कारण रहा है, जिसके कारण मेट्रो सेवाओं में देरी और व्यवधान होता है। दिल्ली मेट्रो ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित की है। इन अवसरों पर सभी लाइनों पर 5 से 7 सदस्यों वाली रखरखाव टीमें तैनात की जाती हैं, जो उलझे हुए मांझे को हटाने के लिए तुरंत किसी भी प्रभावित स्थान पर पहुंचती हैं। विज्ञप्ति के अनुसार इन सभी उपायों के चलते पिछले कुछ वर्षों में स्वतंत्रता दिवस के आसपास ऐसी घटनाओं में कमी आई है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि वर्ष 2021 में ये घटनाएं 102 थी, जो इस वर्ष घटकर केवल 11 रह गई हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
दिल्ली पर्यटन विभाग आज और कल गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस उत्सव में गैर सरकारी संगठनों द्वारा कृष्ण भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और स्वादिष्ट व्यंजनों और हस्तनिर्मित वस्तुओं के स्टॉल शामिल है। हमारे संवाददाता ने जन्मोत्सव में आई दिल्ली निवासी सीमा से बात की, जिन्होंने बताया कि उनकी बेटी इस उत्सव में नित्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है।
मेरा नाम सीमा मिश्रा है, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ और मेरी बेटी है आहाना त्रिवेदी एंड शी इज पार्टिसिपेटिंग इन अ डांस शो जो ग्रुप डांस है और DQD के माध्यम से यहाँ पे वो सीख रही है और काफी अच्छा और उसने सीखा है और आई बिलीव यहाँ के पार्टिसिपेशन से उसके अपने उस पे उसको खुद भी काफी कॉन्फिडेंस आया।
समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा और जन्माष्टमी के सफल आयोजन के बाद अब सरकार रामलीला और दशहरा के आयोजन में भी श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगी। ये जानकारी उन्होंने बवाना विधानसभा क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर दी। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी धार्मिक आयोजनों के लिए सुचारू प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के त्योहारों की भव्यता का आनंद ले सकें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनकी वतन वापसी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का उत्सव था। उन्होंने कहा कि उनके साथ मिशन के लिए नामित बैकअप यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, इसरो के अध्यक्ष डॉ वी नारायण भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में भाग ले रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के मुद्दे पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की नेहरू प्लेस में 2 एकड़ जमीन पर 5 सितारा होटल बनाने का ठेका फ्लेयर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इस परियोजना में 55 वर्ष में प्राधिकरण को करीब 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। एक विज्ञप्ति के अनुसार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में पिछले वर्ष शुरू की गई सुधार किए गए जिससे राजस्व सृजन के मामले में शानदार परिणाम सामने आए हैं। साथ ही राजधानी में आवश्यक विकास कार्यों की भी उन्हें भी सुगम बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल की शताब्दी पर विशेष डाक टिकट जारी करेंगे। यह डाक टिकट आगामी अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन में जारी होगा, जिसमें देश भर के विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 175 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बवाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी ने स्कूल छोड़ दिया था और सिर्फ दूसरी कक्षा तक ही पढ़ा है। बाद में उसने ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया। उसका परिवार पश्चिम बंगाल में रहता है, जबकि वह दिल्ली में अकेला रह रहा था। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। यह कॉल सेंटर क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। पुलिस ने 6 साइबर धोखाबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर विकासपुरी क्षेत्र में चल रहा था। आरोपियों के पास से 41 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक राउटर और बैंक ग्राहक डेटा डायरियां जब्त की गई हैं। पुलिस के अनुसार बरामद मोबाइल फोनों के खिलाफ 95 शिकायतें मिली हैं, जिनमें लगभग 85 लाख रुपए की ठगी की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से हुए जलभराव का निरीक्षण किया। श्री सूद ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्रवासियों को हर संभव राहत प्रदान करेगी और भविष्य में ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं तेजी से दुरुस्त करेगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कल से नई दिल्ली में 30वीं राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करेगी। यह विद्यापीठ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। आयुष मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस वर्ष का विषय है आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग और कल्याण का प्रबंधन। राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री कम 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आईआईटी दिल्ली के स्नातक परास्नातक के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से बातचीत की। दिल्ली मेट्रो के अनुसार स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के दौरान पतंगबाजी के कारण होने वाली ओवरहेड इक्विपमेंट ट्रिपिंग में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। दिल्ली पर्यटन विभाग आज और कल गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। और दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।